हम लोग जो है अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत इस विश्व के विषय में जान सकते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत कम ज्ञान है। और लेकिन संपूर्ण रूप से विश्व को समझना बहुत कठिन है। हम देखते हैं कि आज समाज में वैज्ञानिक जगत में लोग जो है आप जितना ही ज्यादा जानेंगे उतना आप महसूस करेंगे आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जो अहंकारी जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि वो हम जितना जानते हैं हम सबसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वास्तव में समझते नहीं है बातों को। ये जो सृष्टि रचना है वो अचिंत्य है, हमारे समझ से परे है। एक छोटा सा जो अणु है, ये एक छोटा सा अणु है, वैज्ञानिक उसके गहराई में जाते हैं, अत्यंत गहराई में जाते हैं तो समझते हैं कि इसके अंदर कुछ और है, और कुछ ऐसी चीज है जो वो समझते हैं कि हम जानते ही नहीं है वास्तव में क्या है इसके अंदर। तो वो अनुभव करते हैं कुछ और है, वो कौन सी शक्ति है, वह शक्ति कौन सी है इस तमाम छोटे अणुओं के बीच जो इन अणुओं को उनको चलायमान रखी है, वो क्या शक्ति है। ये अचिंत्य है वास्तव में। सृष्टि के बारे में सब कुछ अचिंत्य है। खाली एक चीज जो समझने लायक है, ये समझते हैं कि हम वास्तव में समझते हैं, यही अचिंत्य है। हम अपने आप को समझते हैं कि हम समझ रहे हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से पूरी सृष्टि को देखते हैं तो हम भगवान को देख सकते हैं, कृष्ण को इस सृष्टि में देख सकते हैं। तब ये अचिंत्य शक्ति है। ये अचिंत्य शक्ति सर्वव्यापक है। अचिंत्य शक्ति ऐसी नहीं है कोई सैद्धांतिक ढंग से हम उसका वर्णन करें कि जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं तो उनका इस तरह से लक्षण होता है। अचिंत्य शक्ति, भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ अचिंत्य शक्ति है। इस संपूर्ण सृष्टि में ये कृष्ण का ही प्राकट्य रूप है, इसलिए सब कुछ सृष्टि जो है सृष्टि में सब कुछ अचिंत्य है हमारे लिए। जितना ज्यादा इस बात को हम समझते हैं ये अचिंत्य है, और यह तभी संभव है जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं, अपनी इंद्रियों से, एक छोटी सी जो हमारी बुद्धि है उससे जब हम ऊपर उठते हैं तो हम समझ सकते हैं। जो बड़े बड़े विचारक हैं, हाँ, जैसे आइंस्टाइन और दूसरे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका निष्कर्ष यह है कि बिना किसी सर्व बुद्धि के चलते ऐसा काम नहीं हो सकता है जो सृष्टि की रचना है, तो यह अचिंत्य है। एक वैज्ञानिक था, वो बहुत ईमानदार था, क्योंकि वो बहुत धार्मिक था, थोड़ा धार्मिक था वो व्यक्ति। उसने कहा कि जो मैंने समझा कि ये जैसे समुद्र के किनारे पे जाना और उस किनारे से एक बालू के टुकड़ों को समझना, तो वो साइंटिस्ट बता रहे थे यही हम थोड़ा समझे हैं। इस भौतिक संसार का जो समुद्र है वो हमारी समझ जो है खाली एक छोटे से बालू को समझने जैसी है। हमको मालूम ये नहीं है कि उस बालू के कण के नीचे क्या है। तो जितना ज्यादा हम समझ इस जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे ये कार्य कर रहा है, उतना ही हमारे लिए समझना कठिन हो जाता है कि ये कैसे कार्य कर रहा है। पौधे, एक बीज से बड़े बड़े पौधे होते हैं, एक एक प्रत्येक जीव कैसे वे बड़े होते हैं, कहां से आते हैं। आप समस्त लोग हाँ जो यहां बैठे हैं, आप छोटे से जीवात्मा हैं, जो जीव जो आत्म जो अचिंत है और शाश्वत है, और वही आत्मा वास्तव में पूरे भौतिक प्रकृति को वह चलायमान करती है हाँ? और परमात्मा जो है, जो भगवान कृष्ण है, वो हमारे इस शरीर में विराजमान है, और उसको शरीर को वह जीव जो है वो चला रहा है। ये कितना अचिंत है हमारे लिए। आप व्यक्तिगत रूप से जन्म और मृत्यु से परे हैं, आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से भगवान के अंश हैं, आपके पास अचिंत रूप से असीम प्रेम है भगवान के पास। अब में से प्रत्येक लोगों के पास पूरी तरह से दया है, प्रत्येक जीव के प्रति दया है, आप सबके प्रति। हम में जितने लोग हैं सबके ये गुण है, हम सभी सच्चिदानंद हैं, शाश्वत रूप से ज्ञान और आनंद और शाश्वतता से भरे हैं। आप में से कितने लोग इसको अनुभूत करते हैं? हम आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्लेश से परे हैं, दुख से परे हैं, हमेशा के लिए। आप दुख छू नहीं सकता है आपको, कष्ट छू नहीं सकते हैं, दुख से परे हैं। क्या आपके पास ऐसी अनुभूति हुई है कभी? जो गणितज्ञ हैं और टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक लोग वो कहते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं, जो जीवात्मा है वो अचिंत्य है, हमारे बुद्धि से परे है, कितना असीम है वो, उसका कोई सीमा नहीं है, उसका प्रारंभ नहीं है, अंत नहीं है, और वो हम हैं, वही हम हैं। एक एक जो अणु है संपूर्ण सृष्टि का, एक एक जो अणु है वो उसी का अंश है, क्योंकि जो प्रकृति है, जो भौतिक प्रकृति है, वो शाश्वत है, वो समय के बंधन में नहीं बनती है। समय खाली चीजों को परिवर्तित करता है, है? जैसे उसको इस परिवर्तन में चलायमान कर देता है समय, बस है। यहां तक कि वैज्ञानिक भी जो जो अणु है जो नष्ट नहीं होता, वो खाली परिवर्तित होता है, है? ये अभी ये पीएचडी किए हुए हैं, मैं तो कॉलेज का ड्रॉप आउट हूं, छोड़ा हुआ हूं। हरे कृष्णा। जो मैं समझा महाराज, ये जो अणु और जो शक्ति है, तो इस तरह से या तो शक्ति है या अणु है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है, तो ये वैज्ञानिक कहते हैं। धन्यवाद। आप इसको कितना सरल बता दिए प्रभु। तो यह संपूर्ण सृष्टि कितनी अचिंत है, सब कुछ समय जो है प्रत्येक को चलायमान कर देता है, तो ये भौतिक प्रकृति जो है वो समय के द्वारा प्रभावित है, रजोगुण तमोगुण सतगुण के द्वारा सबको जो है वो चलायमान रखी हुई है। जो 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 लक्ष्य है हम जानते हैं, जो जिब जिब अणु है उनका सब सब जो है उसकी शक्ति जो है वो चारों तरफ एक घूमती है। जैसे एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, आप देखिए इसके इस प्लास्टिक के अंदर क्या है। अगर माइक्रोस्कोप से अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या दिखेगा, हा? सबसे उत्तम माइक्रोस्कोप अगर हो। मैं वास्तव में अपने आप से सीख रहा हूं। प्लास्टिक पॉलीमोल है जिसमें अनेक अनेक मॉलिक्यूल हैं, उसमें अणु होते हैं, तो इसलिए इस प्रकार इसके छोटे के इस छोटे से प्लास्टिक के अंदर भी परमात्मा है। हरि बोल। तो इसके अंदर जो जो वायु है वो घूम रहे हैं, निरंतर घूम रहे हैं। अब देखिए आप इसको देख रहे हैं, उसके अंदर लगातार घूम रहा है अणु जो है। ये पूरी तरह से अचिंत है, सोच नहीं सकते। और कुछ ऐसे तत्व हैं जो हम देख भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते उसके प्रभाव कैसे दूसरे के ऊपर डालते हैं। और इससे परे कुछ दूसरा तत्व है जो अंततः परमात्मा के स्तर पर अभी आपने बताया, तो जब जो सबको चला रहे हैं, परम आत्मा मतलब भगवान, वो खाली प्रत्येक जीव के हृदय में ही नहीं है बल्कि प्रत्येक अणु में कण में विराजमान है। और परमात्मा पूर्णतया अचिंत है, परमात्मा वो समस्त कारणों के कारण है। वो परम महतो महीयानम, महतो महीयानम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। और वो है जो सबका एक एक अणु का सार है। ये फिर बहुत अचिंत बात है। तो अक्रूर महाराज यहां वर्णन कर रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति के संदर्भ में हमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमारे किसी बुद्धि से, किसी वैज्ञानिक रिसर्च से, यहां तक कि कल्पना से परे हैं। समझ की बात क्या करें, हमारी कल्पना से परे हैं। वो हम खाली कृष्ण को तभी जान सकते हैं जब कृष्ण स्वयं हमें अपने सामने हमें प्रकट कर दें। यह जो है भक्ति का मूल प्रथम सिद्धांत है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम जैसे उनके प्रति शरण लेते हैं, भगवान कृष्ण उसके अनुसार हमें अपने हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। दैवी हेसी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंतिते। ये भौतिक प्रकृति ये हमारे विश्वास से परे है, समझ से परे है। हम इस भ्रम से उबरना बहुत कठिन है, भ्रम से उबर नहीं सकते। हम देखते हैं कि ये जो शक्ति के पीछे जो है, इस भौतिक प्रकृति के पीछे जो है, वो है सब महामाया है, माया भगवान की भ्रामक शक्ति। और वही भ्रामक शक्ति जो है वह सब कुछ को चलायमान कर रही है। वही जो महामाया है वो प्रत्येक अणु के पीछे कार्य कर रही है। ये है, ये भ्रम माया बना के रखी हुई है। और भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी होसी गुणमयी, इस भौतिक श्लोक में बताते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है पूर्णतया हमारे किसी भी व्यक्ति के वो परे है, वो समझ से परे है। भगवान कृष्ण कहते हैं सब भौतिक प्रकृति का नियंत्रण करने वाला मैं हूं, क्योंकि अभी रजहरि प्रभु ने, गौरहरि प्रभु ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बताया। आईआईटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कह रहे हैं महामाया के पीछे परमात्मा है। जो भ्रामक शक्ति है, माया शक्ति है, वह प्रत्येक चीज के पीछे जो है वो निर्देश दे रही है। वही निर्देश दे रही है। तो बिना कृष्ण के ये हमारे लिए अत्यंत असंभव है कि हम कुछ भी हम ज्यों का त्यों समझ नहीं सकते, क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है। लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा से, कृपा से, हम एवं विदुर जन, भगवान कृष्ण की पूर्ण भक्ति से भगवान हमें सब कुछ प्रकट कर देते हैं। और जब वो हमारे पास सब कुछ प्रकट करते हैं तो सब कुछ हमें मालूम पड़ जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो मुझे हर जगह देखता है और प्रत्येक चीज मुझमें देखता है, प्रत्येक वस्तु मुझमें देखता है और कभी फिर इसमें आता नहीं है इस भौतिक संसार में। प्रेमांजनत भक्ति विलोचने न, प्रेमांजनत छुरित भक्ति विलोचने न। भगवान कृष्ण की कृपा से जब हमें प्रेम प्राप्त होता है तो हम कृष्ण को प्रत्येक जगह देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, हम कृष्ण को देख सकते हैं। कैसे हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं? जब हम कृष्ण को सेवा करने के लिए, उनको देखने के लिए प्रत्येक परिस्थिति में जब हम अवसर पाते हैं, जब हम सेवा करने का प्रयास करते हैं, तब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास ऐसी आंख है, जब किसी को आप देखते हैं तो एक एक कण उसका सब कुछ देख रहे हैं, उनके अंदर की जो है सब कुछ देख रहे हैं, सब एक एक कण जो है वहां अंदर घूम रहे हैं। आपके पास ऐसी आंख नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, यही सच्चाई है। हम ऐसा जो कहते हैं इस नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम परेशान हैं ऊपरी तरह से। हमारे पास जो दृष्टि है वो अपूर्ण दृष्टि है। हम देखते हैं खाली पुरुष स्त्री बहुत सुंदर हैं, खाली हम देखते हैं, क्योंकि हम बाह्य दृष्टि से उनको देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास गहन दृष्टि हो तो आप देखेंगे उनके अंदर खून, मांस, उनके कण जो है, सेल है, कैसे घूम रहे हैं शरीर के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब कुछ वहां घूम रहे हैं शरीर के अंदर। तो आप कभी भी आकर्षित नहीं होंगे किसी एक दूसरे से। ये बहुत तकलीफ देने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। तो माया जो है हमारी दृष्टि को इस स्तर हमें खींचती है कि हम हमेशा भ्रम में पड़े रहें। ये माया का कार्य है। ये भी एक अचिंत बात है। क्यों एक रैट चूहा जो है दूसरे चूहे में इतनी सुंदरता क्यों देखता है? एक काकरोच जो है, एक महिला जो काकरोच है उसके समान उसको दूसरा कोई सुंदर दिखता ही नहीं है। अगर एक जो कैटरपिलर है, अगर वो अगर मिस इंडिया के सर्वोच्च सुंदरी महिला के शरीर पे अगर वो काकरोच घूम रहा है तो भी उसको वो सुंदर नहीं दिखेगी। थोड़ा सा भी उसको आकर्षण नहीं होगा। अगर उसी प्रकार अगर वो मिस इंडिया के अगर विशेष अंग पे भी वो घूमता रहे, कैटरपिलर जो कीड़ा है, फिर भी उसको आकर्षण नहीं होगा। ये माया कैसे कार्य करती है? ये सब पहले से उसके फिट बैठा दिया गया है ताकि उसको भ्रम में हमेशा बनाए जा रखे। ये जो आकर्षण और भ्रम है ये हमारे जीवन में माया पैदा करती है। ये भौतिक प्रकृति की शक्ति है, माया की शक्ति है। और अक्रूर महाराज कह रहे हैं अगर कृष्ण अपने आप को हमें प्रकट करना चाहते हैं तो वो इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, कर सकते हैं। और यहां पर देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण को नारायण के रूप में देख रहे हैं, वो बलराम को अनंत शेष के रूप में देख रहे हैं। और जब वो फिर वापस आते हैं अपने रथ के पास तो वो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम तो अनंत शेष और नारायण के वो उद्गम है, वो देख रहे हैं रथ पे बैठे हुए भगवान को। तो भगवान कृष्ण उनको सब कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि बाह्य दृष्टि से वो कृष्ण को मारने के लिए वो आए हुए, एक लक्ष्य बना करके वो कृष्ण को संहार करने की दृष्टि से आए हुए हैं। वो एक ऐसे यात्रा पे एक लक्ष्य लेके आए हैं कि कृष्ण को कष्ट दे, उनको तबाही के रास्ते पर ला दें। राधा रानी, नंद, यशोदा और विशाखा, सुदामा, सुबल, जितने भी ब्रजवासी हैं जो कृष्ण के प्रेम करते हैं, ये बहुत ही भयंकर स्थिति हमारी कल्पना से परे है। लेकिन वो इस बात को समझ गए, समझते थे कि कृष्ण हमारे हृदय को जानते हैं। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कृष्ण जो है जो अर्पित करते हैं उसको नहीं देते हैं, बल्कि हमारे भाव को स्वीकार करते हैं भगवान। हम देखते हैं कि अक्रूर जो है वो अक्रूर को गलत समझा गया समझे जा समझते हैं लोग जो वो कर रहे थे, लेकिन उनके पास इतना पवित्र इरादा था, वो वास्तव में समझ गए कि कृष्ण बलराम यही चाहते हैं मुझसे करवाना, वो इस बात को समझ रहे थे। वास्तव में कृष्ण और बलराम वे उनको सम्मान सत्कार कर रहे थे, उनके चाचा के रूप में, वरिष्ठ के रूप में, हा? और क्यों वो, क्योंकि वो उनको कहे कि आप आइए, इसलिए उन्होंने सम्मान के साथ कहा ठीक है हम लोग चलेंगे। वो बहुत बहुत आकर बहुत उत्तेजित थे कि हम मथुरा जाएंगे, हम जो है वहां मल्ल युद्ध करेंगे, मथुरा दर्शन करेंगे। बहुत प्रसन्न थे भगवान और कृष्ण और बलराम। तो यहां जो ये सुंदर जो प्रार्थना है, इसका संदर्भ यह है कि यहां तक जो ब्रह्मा है, जो इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, इन भौतिक प्रकृति में वो भी बंधे हुए हैं, बंध जाते हैं, वो सही बात नहीं जानते हैं। आईआईटी से जो पीएचडी किया है उसके बारे में क्या हम चर्चा करें हैं? यहां तक कि ब्रह्मा भी कृष्ण की शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्मा जो है, जो उन्होंने इस प्रकृति की रचना किया, वो भी उसकी जटिलता को नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शक्ति है वो है, ये समस्त चीजों की जो शक्ति जो है वो चलायमान कर रही है, वो ब्रह्मा ने बना, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं सकते ब्रह्मा। ये अंततः एक टेक्नोलॉजी है, वो स्वीकार करते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है अंदर, वो कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में क्या है जो उनकी उनकी बुद्धि को चला रहा है, क्या है वो समझ रहे, जानते हैं कि ये कृष्ण है, ये कृष्ण की शक्ति है। और अंततः यही चीज हम सबको जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत पुस्तक की स्थापना किया, इन तमाम चीजों को हमें बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं ताकि हम इस बात को समझें कि ब्रह्मा की क्या स्थिति है, उनकी जो ज्ञान है उनसे भी परे है, समस्त ज्ञान से उन ब्रह्मा के गणे से प्यार है। वो खाली एक चीज समझते हैं कि भगवान कृष्ण अचिंत्य है, वो खाली कृष्ण ही सब चीज को शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो विराजमान है इस भौतिक संसार में। और भगवान कृष्ण अपने आप को प्रदर्शित प्रकट करते हैं, यहां बताया जा रहा है जब भक्ति होती है, भक्ता त्वा अनयास शक्य विदुर जन। ब्रह्मा जी, इंद्र, सबसे महान जो विद्यमान लोग हैं स्वर्ग के लोकों में, इस संसार की बात ही छोड़ दीजिए, वो भी समझ नहीं सकते हैं। भगवान कृष्ण अपने आप को खाली जो समस्त कारणों के कारण है वो प्रकट करते हैं। जब हमारे पास एक प्रामाणिक इच्छा रहती है, प्रेम की इच्छा रहती है, तो भगवान प्रकट करते हैं। मोबाइल बज गया। ये बहुत मधुर अंत है हमारे आज इस कथा का। गौर हरि प्रभु, और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? परमात्मा आपके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं महाराज? बहुत ही सुंदर कथा कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने इसका बहुत ही आनंद उठाया। महाराज कह रहे हैं खास करके जो भाग आपने बताया उसका आनंद हम लोगों ने लिया। महाराज एक प्रश्न है, श्रील व्यासदेव और हमारे आचार्य इतने दयालु हैं, उन्होंने हमें ये सब तमाम भगवान की लीलाओं हमें लीलाओं को प्रदान किया है और हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव देते हैं। उसी प्रकार से ये इतना जिस तरह से हमारा जीवन आज परमात्मा का अनुभूत करने से हम दूर होते जा रहे हैं, भगवान एक एक क्षण हमारे जीवन में अचिंत शक्ति है, तो पूरा जो हमारी जीवन शैली है ऐसी है कि हम समझते हैं कि हम नियंत्रण करने वाले हैं। ये कितना 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 बड़ा अंतर है कि एक एक बैलगाड़ी से जाना और कार से जाना, लेकिन कार में समझता है कि मैं नियंत्रण करने वाला हूं, बैलगाड़ी में वो नहीं समझता है कि हम नियंत्रण करने। तो मेरा सवाल यह है कि परमात्मा की जो अनुभूति है, भगवान की जो अचिंत शक्ति एक क्षण पे है, अपने आप को अचिंत समझना, और इस तरह से जब हरि कथा सुनते हैं और हमें अनुभव होता है जब सुनते हैं भगवान की अचिंत शक्तियों के बारे में सुनते हैं, तो किस प्रकार से अपने जीवन को जब हम जब सरल बिना सरल बनाए हुए हम कैसे इसको समझेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग खाली सुनते हैं और फिर भगवान के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, उनकी शक्तियों के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो दिखावा बन जाता है, बनावटी हो जाता है। तो कैसे हम अपनी शक्तियों को चैनलाइज करें, एक उसको कृष्ण कथा सुनते समय कैसे उसको हम जोड़ के रखें, ताकि हम कृष्ण के कृष्ण कैसे अचिंत हैं कैसे उसका हम अनुभव करें। हरे कृष्णा। इसके लिए खाली जागरूकता की जरूरत होती है। सादा जीवन उच्च विचार वो एक ऐसा सिद्धांत है जो मन की दशा है। हम अपनी जागरूकता के चलते उस चेतना को हम धारण कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में उस चेतना को धारण कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक कृष्ण का जब हम सत्कार करते हैं, जिन्होंने माँ प्रकृत को हमें प्रदान किया है, भगवान कृष्ण ने दिया है, ये सरल जीवन उच्च विचार का एक 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 ये उपलब्धि है कि हम उसका शोषण न करें। उसका जो है हम धारा को और नदियों को प्रत्येक चीज को हम प्रदूषित कर रहे हैं। जो राधा रानी की विस्तारित शक्ति है, जो अंततः कृष्ण की प्रेयसी है, तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। जहां तक संभव है हमें बहुत ही सहज प्राकृतिक रूप से रहना चाहिए। सत्कार करते हुए ये जो उपहार भगवान ने दिया है, जो भौतिक प्रकृति का उपहार दिया है, कृष्ण ने दिया है, उसका सत्कार करना चाहिए। और जब हम देखते हैं ये दिव्य शक्तियां इनके पीछे जो कार्य करती हैं, ये पूरे तत्व के पीछे, यहां भूम देवी स्वयं धूप भूम देवी भी शक्ति हैं जिसमें पूरा संसार जो है विराजमान है। जब हम उनको पहचानते हैं कि भूमि देवी भगवान की प्रेयसी हैं, तो हम इस तरह से रहना चाहेंगे बहुत ही ईमानदारी से, ताकि उसको नष्ट। जब हम इस महसूस करते हैं कि भगवान कृष्ण प्रजापिता है, बीज देने वाले पिता हैं, और हम समस्त लोग कृष्ण के बच्चे हैं, श्री राधा रानी के बच्चे हैं, और राधा रानी और कृष्ण जो है वो पूर्णतया सबके मां और पिता हैं, तो हर बच्चे जो है, चाहे बच्चे हो, पेड़ हो, कीटाणु हो, मछली हो, जितने भी अलग अलग जानवर हैं, अगर हम इस बात को समझते हैं तो एक तरह की दया है उनके प्रति। यह सिद्धांत है समझने का। लेकिन यह फिर हमारी चेतना की बात है, और यह चेतना अलग अलग परिस्थिति, समय और स्थान पे ये बदलती है। श्रील प्रभुपाद हमें इन एक बहुत ही प्राकृतिक समुदाय विकसित करना चाहते थे हमें, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि शहरों में मंदिर भी बने और बसों पे जाकर के हम पुस्तक वितरण करें। प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं जब कम्युनिटी समुदाय जो है गांव की रक्षा कर रहा है, और वो भी देख के प्रसन्न होंगे जब बसों के समूह में बैठ करके हम जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो मैं भारत में हूं, महसूस करता हूं, मैं खेतों में भी जाता हूं जहां पे कोई भी मशीन की चीजें नहीं है, मैंने देखा है लोगों को घोड़ों पे और बड़े ही बैलगाड़ी पे चलते हुए, लेकिन प्रजल्प बात करते हैं, जो अनावश्यक बातें करते हैं वहां भी रहके। मैंने भी देखा है कि कार में भी चढ़े हुए लोगों को मैंने देखा है, कंप्यूटराइज आईफोन लगाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ लोग बात की कथा सुन रहे हैं उसमें बैठ के। तो आप बताइए कौन सा अच्छा है, कार में बैठ करके प्रभुपाद के लेक्चर सुनना अच्छा है, अथवा बैलगाड़ी में बैठ करके प्रजल्प बदमाशी भरी बातों करना, प्रजल्प करना, दूसरे भक्तों का आलोचना करना, कौन सा अच्छा है? हाँ, ये सही है, प्रजल्प और आलोचना करना कार में बैठ के करना, ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है कार में बैठ के। हाँ, तो अंतःकरण में हमें समझना चाहिए, हम एक सुविधा सबको हम प्रदान करें, लोगों को एक उदाहरण स्थापित करें, उनके हृदय को हम पोषित करें, पर साथ ही साथ आज पूरे संसार के जो लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी है, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण बनाने के लिए वो कोई रुकावट नहीं है। तो माँ पृथ्वी की जो है ये सम्मान करने का एक उच्च स्तर की स्थिति है हमारी। तो निश्चित रूप से आज का आधुनिक संसार की उसकी जरूरत है। हा? जिस तरह से जो है आज पर्यावरण का विनाश हो रहा है, हा? उसको रोका जाना चाहिए। तो ये कृष्ण भक्ति है जो ये सब कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम इसको नहीं कर सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कुछ चीजें हैं तो हमारे भक्ति में रुकावट है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ये बड़े शहरों में कि हमें आरती में, भागवत क्लास में आने के लिए लालायित रहना चाहिए, है? और यहां आकर के हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं जहां जिस भी स्थिति में है। तो साथ ही साथ बहुत ही उत्तम उच्च स्तर के उदाहरण हमें स्थापित करना चाहिए, बट साथ ही साथ हम प्रत्येक चीज हर जगह हर व्यक्ति को अवसर दें ताकि वो भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। अब आप अपने अनुभव को यहां बता सकते हैं। गौरहरि प्रभु को माइक्रोफोन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। जैसे यहां पे विश्वभानु प्रभु यहां पे हैं, कीर्तिदा माता जी जब यहां थी वो खेतों में गए थे, हमारा जो सामुदायिक क्षेत्र है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, उनके पास कृष्ण के बारे में सुनने के लिए इतनी लालसा रहती थी, कृष्ण की सेवा करने की लालसा रहती थी। वहां बॉम्बे में फ्लैट में जबकि वो रहते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव किया था इस तरह का, कृष्ण के शरण लेने का उन्होंने चुनाव लिया था, जो सार है। ग्राम का मतलब होता है गांव, ठीक है, सही है ना? ग्राम माने श्री चैतन्य महाप्रभु ग्राम्य कथा लिखे, गांव की कथा। ग्राम कथा माने गांव, गांव की बातचीत जो कि प्रजल्प है, मतलब निरर्थक बातें ना? वो कहने जा ये नहीं कहे कि शहर की कथा, शहर कथा, ग्राम्य कथा, गांव 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 की कथा मत करिए, प्रजल्प। तो दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य है कि गांव में भी ऐसी लोगों की धारणा है कि अनावश्यक चीज बात करें, शहरों में भी इसी तरह से। तो एक नैसर्गिक जीवन जीना चाहिए अपने आप में। ये हमें सतगुण के समीप लाती है, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि माया मेरी जो समझ है, गांव में, भारत के गांव में अनेक अनेक माफिया उद्दंड डकैत रहते हैं, जो मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि गांव में रेप नहीं होता है, और ये कहीं भी हो रहा है, यौनाचार हो रहा है। तो जो धारा विचार है, जो आदर्श जीवन है, बॉम्बे में रह करके सहज प्रकृत ढंग से रहना, जो बहुत ही, ये बहुत पवित्र है और बहुत ही गुह है। श्री प्रभुपाद और हमारे आचार्य चाहते थे कि हम इसको प्रदर्शित करें जहां तक संभव हो लोगों के सामने। लेकिन इसकी वास्तविक सुंदरता यह है कि हम इस तरह से व्यवहार करें कि हर चीज अपने आप को कृष्ण के एकदम समीप रखें। तो जब हम सूर्य के प्रति आश्रित रहें, वर्षा के ऊपर आश्रित रहें, तो एक हमें समझ देती है कि किस तरह से हम प्रकृति के ऊपर अथवा सृष्टा के ऊपर आश्रित हैं। तो ये बड़ी ही वाह जीवन जीने का तरीका है। लेकिन फिर भी इसका सार यह है, लक्ष्य है कि पूरी तरह से कृष्ण के प्रति हम आश्रित रहें। हमारी जो परिस्थिति है आज, जैसे हम श्रवणम कृष्णम विष्णु, हम उस पूरी तरह से शरण जो है हम किसी भी दशा में ले सकते हैं, चाहे जहां हो। एक चीज मैंने समझा महाराज, मैं तमाम पढ़ने का अध्ययन करने के बाद, कि जिस तरह से हम भारतीय गांव हमको मिला है, संस्कृति मिली है, आधुनिक जो पुस्तकें मिली है मीडिया में और साहित्य में जो हमें मिला है, इसमें तमाम ब्रिटिश का जो शासन था वो इस पे है। अगर जैसे एक छोटा से बच्चा है, अगर उसको छोटी पुस्तक मिलेगी तो सुंदर जो पिक्चर है उसमें शहर का पिक्चर रहेगा, और जहां पे गंदगी भरा चीज है वहां गांव और गंदगी दिखाई देती है। तो इसी तरह से हमको मैं महसूस करता हूं कि ठीक है, भारत के गांव आज की तरफ में उसमें बहुत से अभी परिवर्तन हो रहा है, अभी शहरीकरण हो रहा है वहां पे। लेकिन साथ ही साथ मुझे अनुभूति होती है कि अगर हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में भारत के गांव की स्थिति क्या है, 50 वर्ष पहले आसुरी प्रवृत्ति वहां थी, वहां पे वहां हर जगह है आसुरी प्रवृत्ति, लेकिन वहां पे अगर हम समझे इस बात को, गांव में जो है वास्तव में वहां क्या चीज प्रभावी है, प्रकृति के साथ संपर्क ही नहीं बल्कि प्रकृति के दूसरे जीवों के साथ भी, बुढ़ापे के लोग, दूसरे लोगों के, जो जरूरतमंद लोगों, उनके साथ जो एक संभव उनके संपर्क रहते हैं, संबंध रहते हैं, खास करके जो भक्त हैं वो कि कैसे जो वैदिक संस्कृति थी वो दूर हो रही है, गांव की संस्कृति जहां हमारे अर्थ जो है, जो अर्थव्यवस्था चलती है वहां पे जो है हमारा भोजन उत्पन्न होता है। तो लेकिन आजकल जो पुस्तकें हैं, मीडिया है, वो बहुत प्रभावी रूप से उसको कम करके बता रहे हैं। हरे कृष्ण। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान कृष्ण केंद्र में है, बाकी दूसरी चीजें वो झूठा अहंकार है, ये प्रभावी नहीं है वहां। वृंदावन जो एक गांव है, और कितना सुंदर गांव क्यों है, क्योंकि कृष्ण केंद्र में है वहां। ये बहुत कृष्ण को, इन सुंदर सरल जीवन में कृष्ण को स्मरण करना बहुत आसान है, बल्कि बनावटी जीवन की तुलना में बहुत आसान है। लेकिन साथ ही साथ द्वारिका जो कि एक शहर है, शहर के है ना, बॉम्बे की तरह नहीं है, बट लेकिन वृंदावन आज के दूसरे गांव की तरह गांव है, लेकिन द्वारका जो है राजधानी थी। और द्वारका एक पूर्ण स्थल था क्योंकि कृष्ण वहां केंद्र में थे, वहां हस्तिनापुर भी एक शहर है आज के शहरों के जैसा है, और दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा था, बहुत ही भयंकर ढंग से चला रहा था। जब युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर का राज्य चला रहे थे तो देव भगवान के राज्य जैसा था वो हस्तिनापुर का राज्य। तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने झूठे अहंकार के सेवक नहीं बन जाएं, क्योंकि झूठा अहंकार जो है हमारा शोषण करना चाहती है। वो समझती है कि मैं नियंत्रण करने वाला हूं और मालिक हूं, आनंद लेने वाला हूं, ऐसी प्रवृत्ति देती है। और जो वास्तविक अहंकार है आत्मा, वो ये जानती है कि कृष्ण सर्वोच्च आनंद भोक्ता है, आनंद सबके मालिक हैं और स्वामी हैं। अमेरिका श्रील प्रभुपाद ने इस बात को न्यू वृंदावन की स्थापना किया, और उन्होंने न्यू द्वारिका की भी स्थापना किया। ये पूर्ण गांव का जीवन है, ये पूर्ण शहर का जीवन है। तो जहां हम भगवान को केंद्र में स्थापित कर देते हैं वही पूर्णता है। चारों वेदों में जो भारत में जो भी थे, जो भारत में आए, उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत का शोषण करें जो लोग बाहर से आए, और इसीलिए वो तमाम इस तरह के प्रोपोगंडा प्रचार किए, क्योंकि शोषण करना चाहते थे भारत का वो। तो हमें वास्तविक जो प्रकृति है उसको समझने के लिए समझना चाहिए उसे हमें, क्योंकि वास्तविक जो हमारा स्वभाव है वो सनातन धर्म, हम शाश्वत रूप से भगवान के सेवक हैं। हमारे पास कुछ साल है रहने के लिए। प्रत्येक जीव उसका अधिकार है कि वो भगवत धाम वापस जाए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि उन दिनों में मायापुर वास्तव में गांव था। मायापुर पूर्णतया एक छोटा सा गांव, नवद्वीप एरिया का गांव था। वहां जंगल थे और वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको एक जगह मिली थी जहां जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल था, और उसी तरह श्रीवास आंगन, चैतन्य मठ जो चैतन्य शेखर और उनकी पत्नी कृष्ण के अंकल चैतन्य महाप्रभु सुंदर कीर्तन करते थे, वहां वो पूरा एरिया उनका था। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर गांव था वो मायापुर। हाँ, और वो एक सुंदर वहां स्थल बनाया जहां पूरा विश्व आता था, और उन्होंने फिर भी सबसे ज्यादा समय कलकत्ता में बिताया जो कि अंग्रेजों का शहर था ना। क्यों ऐसा? उनके जो पूजनीय लक्ष्य था मायापुर में था ना? लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा समय कलकत्ता में बिताए भक्ति सिद्धांत महाराज, वहां पे जो शहर के लोगों के बीच में, क्योंकि वो लोग थे जिनके मुक्ति प्रदान करना था। आप कैसे भक्त बनते? गांव गांव से आप भक्त बन गए? नहीं, आईआईटी बॉम्बे से वक्त बना एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत से आईआईटी ग्रेजुएट हैं, वो भौतिक संसार भौतिक प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, बहुत से आईआईटी इंजीनियर, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भावना से वो जाते हैं, आपको अवसर देते हैं कि आप दूसरों को भी मुक्त प्रदान करें। तो इसलिए जब तक हम इस बात को समझ नहीं जाते हैं कि हम इन इन सिद्धांतों को हम विस्तारित करें, पर साथ ही साथ हम जन सामान्य लोगों के पास पहुंचें, ऐसी तरह के हम अपने अंदर एक स्थिति बनाएं, ये अनुभव है। ये जब भगवान द्वारिका में रहते थे, वो हमेशा वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन द्वारिका में ही रहे। हमारा पर्यावरण का गांव है, हम चाहते हैं हर जगह ऐसा विकास हो, असीम रूप से गांव का विकास हो, लेकिन साथ ही साथ जो हम यहां सेवा करते हैं तो हमारे हृदय वहां रह सकते हैं, लेकिन हम सेवा यहां कर रहे हैं। तो जब 50 मिलियन जो भूखी जीवात्माएं हैं इस बॉम्बे में, उनके बीच में हम सेवा करते हैं। तो अंततः चाहे आप गांव में मरें, चाहे शहर में आप शरीर छोड़ें, अगर आप कृष्ण को भक्ति करते हैं तो आपका जीवन पूर्ण है। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। कुछ परिस्थितियों में महाराज मैं संघर्ष कर रहा हूं, ऐसा देखा गया है कि कुछ विचार भक्तों के विचार आते हैं, जो भक्त बहुत अपने जीवन में कुछ इच्छा रखते हैं जिसके लिए वो चाहते हैं, और कभी कभी उस विचार के प्रति तो बहुत ही व्यग्र हो जाते हैं, वो चुनौती देते हैं अपने मन में ही। जिस तरह से कुछ चीजें उनके जीवन में हो रही हैं अथवा मंदिर में जो घटनाएं हो रही हैं, तो अपने मन में कैसे एक संतुलन हम बना के रखें, ताकि हम हर विचारों में हम अपने आप को बना के रखें, और साथ ही साथ हम चुनौती न दें दूसरों को। कभी कभी हम जैसे उदाहरण के लिए जैसे गौ सुरक्षा, गौ बहुत अच्छी बात है, हम सब उसका सहायता करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारे जो विद्यार्थियों को प्रचार करते हैं उसमें कोई रुकावट आ जाए। तो उसी प्रकार से ये भक्त जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, किसी विचार को लेकर के बहुत व्यग्र हो जाते हैं, जिस तरह से प्रभुपाद किए थे उसी तरह से वो भी करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। तो वास्तव में मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, जैसे आप करते हैं एकदम संतुलन बना करके, तो हम कैसे इस बात को समझें कि हम संतुलन कैसे बनाएं, हम जो हमारे अंदर प्रेरणा है उसको सम्मान देते हुए कैसे हम बैलेंस बनाएं। हरे कृष्णा। क्या उत्तम है, आपका हृदय अथवा आपका बुद्धि दिमाग? मुझे लगता है दोनों अच्छे हैं। आपका लंग और आपकी किडनी में क्या उत्तम है? निश्चित रूप से दोनों, यही उत्तर है। हमें आचार्यों की दृष्टि से देखना चाहिए, हम अपनी दृष्टि से अथवा किसी बद्ध जीव की दृष्टि से हम नहीं देख सकते। हम दूसरे बद्ध जीवों से सूचनाएं ले सकते हैं, लेकिन हम आचार्यों की दृष्टि से देखना चाहिए हमें। श्रील प्रभुपाद उन्होंने इस बात पे जोर देते वो इस बात पे जोर देते थे कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, वो कहते थे एकता का महत्व, ऊंचे सिद्धांतों के लिए एकता बनाना। कृष्ण भक्ति में विकास का मतलब है कि हम दूसरों के सेवा को समझ सकें और उसको सराहित कर सके। श्रील प्रभुपाद के वैकुंठ की चेतना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति हमसे उत्तम कार्य कर रहा है ऐसा हम सोचें, यह वैकुंठ चेतना है। ऐसा नहीं कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा हूं, यह है चेतना है जो वास्तव में कृष्ण को आकर्षित करती है। हमारे अभियान में हमने देखा है लोग इतने उत्साहित रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम रखने के लिए, और जो माताएं होती हैं वो कुछ भी नहीं, वो खाली घर में बैठ करके बच्चों को देखभाल करते हैं और वो सोचते हैं कि आप क्यों रुकावट पैदा कर रही हैं, मैं जा रहा हूं। लेकिन शास्त्रों में मां का स्थान क्या है? मां की सेवा है अपने बच्चों को प्रेम करना, वो पूरे समाज का एक आधार है। वो मां जो प्रेम करती है बच्चों को, हाँ, तो कैसे आप मां की सेवा को कैसे पहचान सकते हैं? जो दूसरे तरह की सेवाएं लोग करते हैं आप उसको कैसे आप समझेंगे? ये बोलते हैं परिपक्वता। और जब ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सबसे सुंदर है, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छी है, बाकी दूसरे लोगों का अच्छा नहीं है, अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो जो अज्ञानी लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जो सार है उसको आप नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद एक बार कह रहे थे कि जब वो खेतों में आते थे, वो गोरक्षा और खेती के पे बल देते थे, और जब वो स्कूल जाते थे तो वहां बल देते थे, बच्चों को शिक्षा देने के ऊपर बल देते थे, और जब वो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में जाके मिलते थे तो वो प्रभाव डालते थे कि वैज्ञानिक भाषा में जो है बोलिए, लोगों को दीज प्रदान करिए। और जब वो जब कॉलेज में जाते थे, विद्यार्थियों से मिलते थे, शहरों से मिलते थे, तो वो कहते थे कि जब तक हम इन लोगों के पास नहीं जाएंगे हमारा जो अभियान है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसका भविष्य कुछ नहीं रहेगा। और जब वो मंदिर में आते थे तो कहते थे कि पुजारी की तुलना में दूसरा कोई भगवान कृष्ण के समीप नहीं है। और जब किचन में जाते थे, वो किचन में वो बताते थे कि जो प्रसाद बना रहा है वो ये सबसे अच्छी सेवाया है, दूसरी कोई जो कोई भी दूसरा कार्य कर नहीं सकता जब बिना सुंदर किचन सेवा किए हुए, किचन की सराहना करते थे। हाँ, तो वो प्रत्येक व्यक्ति जिससे भी मिलते थे, चाहे वो शहर में मिलते थे, चाहे पुजारी थे, चाहे वो खेती में काम करते थे, गोरक्षा करते थे, अथवा जहां भी कोई मिलता था, सेवा करता था, वो प्रत्येक भक्तों को जो कृष्ण भक्ति को जागरूकता से कर रहा था, तो ऐसा उनको अनुभूति देते थे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और प्रत्येक व्यक्ति की वो सराहना करते थे। ये सब जो है, जैसे एक शरीर के अलग अलग अंग हैं, मैंने देखा है सबसे सुंदर जो गोरक्षा, भारत में जो गोरक्षा का जो कार्य है, जो वास्तव में गौताओं की रक्षा करते हैं, चाहे गोवर्धन का पर्यावरण गांव है, चाहे राजस्थान में बहुत बड़ा समुदाय है, लेकिन वो वास्तव में पूरी तरह से वो शहरों से जो अनुदान आ रहा है उस पर आश्रित रहते हैं ना, तमाम गायों को वो सुरक्षा नहीं कर सकते। बरसाने में भी, उन बरसाने में वो शहरों से उनको धन आ रहा है पूरे विश्व से। ऐसा नहीं को कहते हैं हम अच्छे हैं आप खराब हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बुरे हैं तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो उनको धन नहीं मिलेगा। आप कैसे सिर्फ सेवा कर सकते हैं। तो हमें एक साथ कार्य करना है, एक साथ हम शहरों पर आश्रित नहीं रहना, लेकिन साथ ही साथ हमें एक साथ कार्य करना है। यही है कृष्ण भक्ति, जो उग्रवादिता है अथवा अतिवादिता है, मेरी सेवा आपसे उत्तम है, मेरी सेवा आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी सेवा वास्तविक सेवा है, ये जो मानसिकता है ये विभाजित करती है, ये आलोचना पैदा करती है, दुश्मनी पैदा करती है, भक्तों के हृदय को तो विदीर्ण करती है, और ये कृष्ण को प्रसन्न नहीं करती है और कभी भी प्रसन्न नहीं करेगी। अलग अलग भक्तों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, इसलिए वो अलग अलग सेवाएं करते हैं, इसलिए वो राजा प्रताप रुद्र हो राजा थे, प्रशासक थे, और कोलाबे श्रीधर वो एक केला के व्यापारी थे। कौन सुंदर है दोनों, कौन उत्तम है? अद्वैताचार्य गृहस्थ थे, बहुत सुंदर घर था, शायद उनके 6 बच्चे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी वो पृथ्वी पे रहते थे, वो सन्यासी थे। कौन अच्छा है? ये हमेशा रहता है। प्रभुपाद के समय में जो खेतों में काम करते थे और पुस्तक वितरण करने वालों में विद्रोह था, तो प्रभुपाद ने दोनों लोगों को जो है बहुत आलोचना की, हतोत्साहित किया, उनमें द्वंद्व रहता था। गृहस्थ और सन्यासियों में द्वंद्व रहता था, विद्रोह रहता था। प्रभुपाद ने कहा कि इस तरह से हमारा अभियान जो है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सन्यासी है वो वास्तव में गृहस्थों को आलोचना कर रहे हैं, वो एक तरह से विभक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद गृहस्थों का पक्ष लिए, क्यों? क्योंकि वो रिनाउंसियस की जो मानसिकता थी उसके खिलाफ थे कि हम दूसरों से अच्छे हैं, जो सन्यासी की मानसिकता थी। तो हमारी जो एकता है वही हमारी शक्ति है, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत से लोग हैं, अलग अलग जगह हैं, हमें अलग अलग सबके पास पहुंचना है, लोगों के हृदय को मुक्त करना है। तो हम एक दूसरे लोगों की सेवाओं को हमें प्रशंसा करना चाहिए, दूसरों को शक्तिपात करना चाहिए। अगर हम पेड़ पेड़ के जल में जड़ में पानी डालते हैं तो वृक्ष की जो है शाखा टहनी सब पुष्पित हो जाती है। दूसरे से जब हम इस तरह की विनम्रता से जब हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, इस तरह से बहुत से विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, तो इस तरह जो एक सांसारिक बुद्धि जो है, झूठा अहंकार कि मैं आपसे अच्छा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, आप गलत कर रहे हैं, तो इस भावना को छोड़ना चाहिए। हमें विनम्रता से आचार्यों की दृष्टि से देखना चाहिए और सबकी प्रशंसा करना चाहिए। ये आपके प्रश्न का सवाल है। वास्तव में कृष्ण गायों की सुरक्षा करते हैं, तो गाय की सुरक्षा से उत्तम और क्या हो सकता है? साथ ही साथ हम आप सभी लोग जो है भगवान कृष्ण की गायें हैं इस शहर में। उनको आप सबको भी सुरक्षा प्रदान करनी है। और अलग अलग शरीर के अलग अलग जो समाज के जो अलग अलग अंगों को हम जब प्रशंसा करेंगे, समाज के अलग अलग भागों को, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य आराधना स्वामी महाराज की जय।